मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। एफईआईएस के आज 15 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे दल बदल कानून एवं वीप इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले खासकर दो घटनाओं को हम देख लेते हैं। जो पहली घटना है, यह घटना से संबंधित नहीं है, यह एक आर्टिकल से संबंधित है। आज के दैनिक भास्कर में हरीश एम भाटिया जी का एक आर्टिकल छपा है, आखिर मोदी के विचारों की असफलता के पीछे कौन है, और इसका जो सब हेडिंग है वो है क्यों अच्छी योजनाएं सफल नहीं हो पाती। दोस्तों, सिविल सर्विस का जब आप अपना सिलेबस उठा करके देखेंगे तो निर्णयन उसका एक बहुत बड़ा भाग है, और खासकर जो जनरल स्टडीज का आपका फोर्थ पेपर है मेंस का, उसमें जो केस स्टडी है मूलतः वो निर्णयन ही है कि आप निर्णय कैसे लेते हैं ना। उसमें एक सिचुएशन दी जाती है और फिर आप उसके बारे में अपने विचार लिखते हैं। यहां उन्होंने ये बताया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 सालों से जो निर्णय लिए हैं, और उसमें से कुछ निर्णय बड़े क्रांतिकारी किस्म के रहे हैं, जैसे मोनेटाइजेशन को आप ले लीजिए, आप जीएसटी को ले लीजिए, अभी 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, आप उसे ले लीजिए, स्वच्छ भारत योजना ले लीजिए, और भी जो दूसरे नियम अधिनियम बनाए गए हैं, इनमें से उनका ये मानना है कि ज्यादातर सफल नहीं हो पाए और उनमें बीच बीच में बहुत बदलाव करने पड़े। मोनेटाइजेशन के बारे में आपको मालूम है कि रोजाना कानून नियम बदलते रहे, ठीक है, जीएसटी के बारे में हुआ, तो उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों। सीधी सी बात है कि जब कानून बनाए गए और उन कानूनों को जब जमीनी स्तर पर लागू करने की कोशिश की गई तो वहां गड़बड़ी हुई, इसीलिए वो कानून उतने सफल नहीं हो पाए और उन कानूनों में बदलाव भी करना पड़ा। ये सवाल उन्होंने उठाया है और मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है और मुझे लगता है कि आपके आंसर का हिस्सा भी होना चाहिए, कि दरअसल जब हम कोई भी कानून बनाते हैं या किसी के बारे में भी जब निर्णय लेते हैं तो हमें अब उस कानून में या अपने उस निर्णय में उन लोगों को जरूर शामिल करना चाहिए जिनके बारे में हम निर्णय ले रहे हैं या जिनके बारे में हम कानून बना रहे हैं, क्योंकि वे ही सही तरीके से बता पाएंगे कि उनकी क्या जरूरतें हैं। और देखिए, भारत ने खासकर अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो पंचायतों तक पहुंचा दिया, जिसे हम कहते हैं ग्रास रूट लेवल तक, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि अब जो हमारी योजनाएं बनेंगी वो सचिवालय में बैठ करके नहीं बनेंगी, चाहे वो केंद्र का सचिवालय हो या राज्यों के सचिवालय हो, बल्कि ग्रास रूट लेवल पर बनेंगी। तो कानूनन तौर पर यह व्यवस्था भी की जा चुकी है, व्यावहारिक तौर पर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में भी आपको इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलेगा। चूंकि यह हिंदी में आर्टिकल है, बहुत सरल तरीके से लिखा गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे इत्मीनान के साथ पढ़ें और जो इसमें महत्वपूर्ण बातें आपको लगती हैं उन्हें आप नोट भी कर लें। दोस्तों, जो दूसरी जो एक बड़ी खबर है, या यूं कह लीजिए खबर के रूप में यह एक बड़ी खबर है, वो ये है कि जो ईरान देश है, आपको मालूम है कि ईरान में हमने चाबहार बंदरगाह तैयार किया है, उसने एक रेल परियोजना, वहां जो एक रेल परियोजना थी, उस रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है और अब उस रेल परियोजना के लिए चीन के साथ आप यूं कह लीजिए कि बातचीत के लिए शुरुआत कर दी है, और ये जो परियोजना है लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम देख लेते हैं। पहली बात देखिए कि जो आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन पर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और इस तरह की घटनाओं को समझना चाहते हैं तो चाहे आपको ये पसंद आए या ना आए, लेकिन सही तैयारी केवल मैप के जरिए हो सकती है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि रट करके आप सिविल सर्विस क्वालिफाई कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको बातों को समझना होगा और खासकर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बिना मैप के आप उन्हें नहीं समझ सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए अभी मैंने चाबहार बंदरगाह की बात की। दरअसल ये जो चाबहार बंदरगाह है, लगातार भारत और ईरान के बीच के जो संबंध खासकर इसकी वजह से बड़े घनिष्ठ होते चले गए हैं। इस पर एक साल सिविल सर्विस मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये 2003 से इस बंदरगाह पर काम होना शुरू हुआ है और यहां तक कि बाकायदे अब इस बंदरगाह से भारत ने सामान भी भेजना शुरू कर दिया है और अफगानिस्तान को 2018 में माल की सप्लाई भी की गई है। जब ये चाबहार बंदरगाह को आप समझने की कोशिश करते हैं भारत के संदर्भ में कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको एटलस पलटना पड़ेगा। एटलस में आप पाएंगे कि भारत का जो वेस्ट कोस्ट है, जो पश्चिमी घाट है, देखिए वही एशिया की तरफ खुलता है और फिर आपको हिंद महासागर, अरब सागर वो दिखाई देगा, हिंद महासागर का पार्टी है अरब सागर, और इसके बाद आप देखेंगे कि नीला पोर्शन बीच में से, एशिया के बीच में से जिसे हम मध्य एशिया कहते हैं उनके बीच में घुसता है, जिसे आप द गल्फ कहते हैं, गल्फ कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, है ना। आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, तलवार की आप कह लीजिए नोक की तरह वो अंदर घुसती चली जाती है और उसी के किनारे आपको ईरान दिखाई देगा। ईरान, इसका मतलब है कि वो बंदरगाह है वहीं कहीं होगा। चलिए अब हम एक इमेजिन लेकर के चलते हैं, कल्पना करके। तो ये जो चाबहार बंदरगाह होगा यही इस गल्फ के किनारे ही होगा। इसका मतलब है कि अगर हमने यहां से यहां अपने वेस्ट कोस्ट तक, पश्चिमी घाट तक, पश्चिमी हिस्से तक, तट तक एक रास्ता बना लिया, तो आप देखें कि जब हमारा ये रास्ता बन जाता है तो सीधे सीधे मध्य एशिया तक हमारी पहुंच मजबूत हो जाती है और ईरान का जो कूटनीतिक महत्व हमारे लिए है वो ये है कि फिर आप नक्शे में देखेंगे कि ईरान का ही पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं लेकिन अफगानिस्तान के नीचे ही बिल्कुल उनका पड़ोसी देश जो है वो फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के संबंध हमारे कैसे हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। केवल पाकिस्तान ही नहीं, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं फिर चीन भी जुड़ जाता है और आप देखिए कि ईरान ने अब चीन के साथ बातचीत शुरू की है, हमें इसे समझना पड़ेगा। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए कि आप क्या पाते हैं। बातें ये हैं कि भारत के लिए ये जो रेल प्रोजेक्ट था ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। सन 2016 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां की यात्रा पर तो बकायदे इस पर साइन हुआ था और इस पर ये हुआ था कि चाबहार से लेकर के जिहादान, ZAHEDAN उच्चारण को लेकर के कभी कभी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, तो वहां तक एक रेल परियोजना तैयार की जानी थी, रेल लाइन तैयार होनी थी। ठीक है, फिर जब आप इस जगह को देखने की कोशिश करेंगे कि यह जगह कहां है तो आपको फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा जिसे आप वैसे याद नहीं कर सकते, मैप से समझ सकते हैं कि यह जो स्थान है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के निकट है। यानी कि जो रेल प्रोजेक्ट है जो भारत बनाता, अब आप देखिए कि सीधे हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के निकट पहुंच गए, फिर हमारी पहुंच अफगानिस्तान तक हो गई है। तो आप सोच करके देखिए कि ये प्रोजेक्ट भारत को कितना शक्तिशाली बना देता। लेकिन इसका अनफॉर्चुनेट पार्ट यह हुआ कि आपको मालूम है कि ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया और जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया तो भारत को भी मजबूर होकर के ईरान से जो वो तेल मंगाता था उस पर आप कह लीजिए कि कमी करनी पड़ी। और साथ ही साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए अब यहां आकर के कि उसी का परिणाम यह है कि उनके द्वारा बार बार याद दिलाए जाने के बावजूद हमने रेल प्रोजेक्ट को अब आगे बढ़ाने से इनकार तो नहीं किया लेकिन एक तरह से टाला मटोली करते रहे और अंत में फिर परेशान होकर के अब ईरान ने चीन से बातचीत करनी शुरू कर दी है। दोस्तों ये करीब 628 किलोमीटर लंबा रेल प्रोजेक्ट था। तो ये तथ्य अब भारत और ईरान के जो संबंध हैं और मध्य एशिया में जो भारत की स्थिति है उसके तहत जुड़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है दल बदल कानून एवं वी। देखिए दल बदल कानून पर बकायदे आपने पढ़ा होगा और किताबों में काफी कुछ लिखा भी गया है। होता यह है कि किताबों में जो बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं बहुत जो इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं वही हम पढ़ सकते हैं और वही किताबों का मकसद भी होता है। अगर बारीक बातें बताई जाने लगे तो फिर पता लगा कि एक ही चैप्टर इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको ऊब होने लगेगी और सच पूछे तो सारी चीजें इस तरह से मिक्सअप भी हो जाएंगी कि आपके समझ में भी कुछ नहीं आएगा। यहां मैं इसलिए स्पेशली वीप के बारे में बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इसके बारे में दैनिक भास्कर ने बकायदे आज एडिटोरियल आर्ट कमेंट किया है और वो एडिटोरियल कमेंट भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए, व्हीप का मतलब क्या है? व्हीप का मतलब है कि जो पार्टी है, कोई भी एक पार्टी है, जैसे चाहे वो राज्य की विधानसभाएं हों, चाहे वो केंद्र की संसद हो, विधानसभा विधानमंडल है, पार्टियां होती हैं, राजनीतिक दल। तो जैसे मान लीजिए किसी बात पर मतदान होना है, वोटिंग होनी है, चाहे वो अधिनियम पर होनी हो, संविधान संशोधन अधिनियम हो या अविश्वास प्रस्ताव हो, इन पर मतदान होना है। तो पार्टी अगर जरूरत समझती है तो वो अपने जितने भी सदस्य हैं उनके लिए एक आदेश जारी करती है, आप यूं कह लीजिए। आदेश इस तरीके का कि आपको इसके पक्ष में मतदान करना है या इसके विपक्ष में मतदान करना है। साथ ही साथ वो ये भी इंश्योर करते हैं कि आपको आना ही आना है, मतदान में शामिल होना है। तो ये आदेश हो गया व्हीप, इसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। उल्लंघन करने पर फिर पार्टी अपने ढंग से जो भी निर्णय लेना होगा वो लेगी। दल बदल कानून के बारे में क्या किया गया है, अब आप देखिए कि जैसे बहुमत साबित करना है, जैसे राजस्थान को ले लीजिए, अब राजस्थान की सरकार को, जो कांग्रेस की सरकार है, अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, डेफिनेटली ऐसा समय आएगा। ठीक है, सचिन पायलट जी के साथ लगभग 30 विधायक हैं जो कांग्रेस के हैं। अब ये, अब मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने व्हीप जारी कर दिया, तो व्हीप जारी करने के बाद उम्मीद की जाती है कि सभी कांग्रेस पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वो अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मत देंगे, यानी सरकार के फेवर में मतदान करेंगे कि हाँ हम इनके साथ हैं। सपोज मान लीजिए कि कुछ सदस्य व्हीप को मानने से इनकार कर देते हैं और सरकार के विरोध में मतदान करते हैं, अब क्या होगा? इसके बारे में ही एडिटोरियल कमेंट लिखा गया है। उसमें यह है कि अगर उन्होंने सरकार के विरोध में मतदान किया तो देखिए सीधी सी बात है कि सरकार अल्पमत में आ सकती है और अल्पमत में आएगी तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, सरकार गिर गई, लेकिन दिक्कत यह है कि इन्होंने अपने जो व्हीप का उल्लंघन किया उसके बारे में यहां कोई भी प्रावधान नहीं है, वहां चुप है। अब क्या करेगी पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने व्हीप जारी किया था, उनके सदस्यों ने आदेश माना नहीं, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? तो उसके लिए प्रोविजन यह है कि कांग्रेस पार्टी बकायदे स्पीकर के पास जाएगी, यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष के पास जाएगी, अपनी बात रखेगी और फिर विधानसभा के अध्यक्ष इस बात का निर्णय लेंगे कि ये जो विधायक है जिन्होंने व्हीप के अगेंस्ट मतदान किया है, इनकी सदस्यता बरकरार रहती है या नहीं। अब आप देखिए कि वहां सरकार के साथ तो जो होना था हो गया, सरकार गिर गई, सदस्यता के बारे में बाद में विचार हो रहा है। इसी प्रश्न को इस एडिटोरियल कमेंट में उठाया है और बकायदे यह रिक्वेस्ट की गई है कि इसके बारे में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, कानून की बहुत बड़ी खामी है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग इस एडिटोरियल कमेंट को भी पढ़िएगा, आपको काफी बातें जानने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: आशुतोष आचार्य, डुल्पो हजारिका असम से, मुकेश यादव उत्तर प्रदेश से, शिवांश और गौरव कुमार, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।